समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना ही पड़ता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन में अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें और अपने मनोरथों को सिद्ध करें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। दिस इज आज सवेरे एंड यस, वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम। वेल, इट इज अ ब्लेंड ऑफ न्यूज, म्यूजिक एंड सो मेनी थिंग्स, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल। वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर टुडेज हिस्ट्री। टुडे इज 13th ऑफ मई 2026, सो लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विदाउट एनी फर्दर डिले। वी आर स्टार्टिंग विद द हेडलाइंस।
जी बिल्कुल। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को AIDMK से अलग हुए गुट का समर्थन भी प्राप्त है। विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
The Central Bureau of Investigation or CBI has taken into its custody Shubham Khenner in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam was admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities.
उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। जिन मामलों में लापरवाही पाई गई है उनकी दोबारा जाँच की जाएगी, साथ ही उस समय दर्ज शिकायतों और जनरल डायरी की भी फिर से जाँच होगी।
Now let's give you the weather updates. So the India Meteorological Department has issued red alert for heatwave conditions in Rajasthan. Border districts of the state are currently reeling under severe heatwave conditions. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius, pretty hot. Barmer was the hottest place in the state yesterday with the maximum temperature recorded at 48.3 degrees Celsius. So this is all about Rajasthan. So the director of the Meteorological Center, Jaipur, told Akashwani that severe heatwave conditions are likely to continue in the western districts of the state for the next 3 to 4 days.
और अगर बात करें खेल जगत की तो आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से मात दी। कागिसो रबाडा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही गुजरात टाइटन्स अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है।
Now, Asian Boxing Under 17 Championship. So, at this particular championships, in Tashkent, Uzbekistan, Lakshya Phogat emerged as the lone finalist among the Indian boys after defeating Korea's Sungmin Lee 5-0 in the 75-kilogram semi-final. Four other Indian boxers settled for bronze medals. Meanwhile, the Indian girls continued their impressive campaign with 8 boxers advancing to the finals and 4 others clinching bronze medals. The girls' team will now aim to convert their strong performances into gold medals in the finals.
श्रोताओं अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का. सबसे पहले बात दिल्ली से जुड़े समाचारों की. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे. इसमें 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का समाधान किया जाएगा. पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने कहा कि वर्ष 2017 में अपनी स्थापना के बाद से पेंशन अदालतें लंबे समय से लंबित और जटिल पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी मंच साबित हुई हैं. अब तक आयोजित 15 पेंशन अदालतों के माध्यम से लगभग 28,000 मामलों पर सुनवाई हुई है. और दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की द्वारका उपनगरी को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है. एक बैठक में उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को द्वारका के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने के दिशा निर्देश दिए. उपराज्यपाल ने कहा कि इसी तर्ज पर रोहिणी और नरेला को भी विकसित किया जाएगा. इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वर्ष 1956 से देश के चिकित्सा नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्यरत है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा को किफायती बनाया है. उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख ओपीडी के साथ संस्थान ने अद्वितीय गुणवत्ता के साथ रोगी देखभाल का मानक स्थापित किया है. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में रोगी देखभाल अवसंरचना के निर्माण के लिए एम्स में 2,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग 390 से बढ़कर 825 हो गई है.
So, Tamil Nadu is among the top 5 states in India in higher secondary education enrollment with a gross enrollment ratio which is GER of 83.4% according to a Niti Aayog report. Goa ranked first with 93.8%, followed by Kerala and Himachal Pradesh at 84.7%, while Uttarakhand stood at 80.9%. So the report said, Tamil Nadu improved its higher secondary GER, which is gross enrollment ratio, by 13.1% between 2014 and 2025. So enrollment among girls also increased from 76.7% during the same period. Education experts said that this rise is due to more higher secondary schools, free laptop schemes, also campaigns to bring back dropouts and incentives for continuing education. The report also noted that 60.8% of schools in Tamil Nadu have functional smart classrooms.
और अगर बात करें महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों का, तो महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर और सतारा में पूर्व सैनिकों के लिए एकीकृत कल्याण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है. पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए गठित विशेष निधि समिति की 50वीं वार्षिक बैठक कल मुंबई के लोकभवन में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में 5,459 पुलिसकर्मियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम के रूप में 1,768 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए आवास ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना लागू की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इसे महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बाद में इस योजना को दोबारा शुरू किया. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 और 56 के तहत की गई है. सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
So turning our attention to Bengaluru, the first update, Karnataka has secured major recognition in the National Panchayat Awards 2025 announced by the central government. Six Gram Panchayats from the state won awards in different categories, and this makes Karnataka one of the top performing states in the country. Rural Development Minister Priyank Kharge congratulated the award-winning panchayats. Mudradi Gram Panchayat in Udupi district won the first prize in the poverty-free and enhanced livelihoods category and received a cash award of 1 crore rupees. Other award-winning panchayats, they included Vansay, Sanuru and Hakladi. Five of the six award-winning panchayats are from Udupi district only. Another update, it is about PME Drive scheme. So Union Minister H.T. Kumaraswamy has announced approval for 1,243 EV charging stations in Karnataka under this scheme, PM E-Drive scheme, with a financial outlay of over 123 crore rupees. Addressing a national conference on EV charging infrastructure in Bengaluru, the minister said, H.D. Kumaraswamy, he said, Karnataka, especially Bengaluru, has become a key hub in India's clean mobility transition. He added, the proposals for 4,874 EV chargers worth over 503 crore rupees have been approved across various states and public sector enterprises.
और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी विभागों को अगले छह महीने और दो साल की विकास योजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. वित्त विभाग की अधिसूचना के आधार पर सख्त उपस्थिति नियम भी लागू किए गए हैं. सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुबह 10 बजे से सवा 10 बजे के बीच ड्यूटी पर उपस्थित होना अनिवार्य है और उन्हें शाम 5 बजे से सवा 5 बजे के बीच जाने की अनुमति नहीं होगी. नए नियमों का लक्ष्य शासन को गति देना है.
नाउ लेट्स हेड टू हैदराबाद. तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला इनॉग्रेटेड द फील द जेल, द फील द जेल एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम and Jail Museum at the State Institute of Correctional Administration in Hyderabad. The governor said that prisons must transform from places of punishment into centers of reform. He emphasized that social progress requires both punishment and rehabilitation, helping prisoners develop personality and start new lives. The initiative, this allows visitors to experience prison life firsthand through specially designed cells. So the Jail Museum displays the history of prisons in Telangana, and this includes exhibits from Nizam era and the role of prisoners in building the Nagarjun Sagar Dam. The museum features displays about notable historical figures who were actually imprisoned in Telangana, such as Dasarathi Krishnamacharyulu and Bhakta Ramadasu. It also showcases prisoner rehabilitation programs, prison industries and inmate-made products. So these were the Metro City updates, listeners, for you.
और श्रोताओं, आज सवेरे कार्यक्रम में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का. इधर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो शहर में आज बारिश और आंधी आने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. उधर मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा. शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. अगर बात करें कोलकाता की तो शहर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच सकता है. अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल शगुन से.
Well, beginning with Chennai, Mukesh. Chennai is expected to have generally cloudy sky and there is a possibility of light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees Celsius in Chennai. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 22 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature, minimum temperature, will be around 27 degrees Celsius and maximum temperature in Hyderabad will be around 40 degrees Celsius.
अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
Well, we'll start with the year 1648. So the construction of the Red Fort, Lal Qila in Delhi, was completed after nearly a decade of work and becoming the primary residence of the Mughal emperors. In 1846, the United States Congress officially declared war on Mexico following a request from President James K. Polk. In 1909, the first Giro d'Italia bicycle race began in Milan, Italy.
और 1918 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किए।
In 1940, Winston Churchill delivered his first speech as Prime Minister to the House of Commons, and he famously stated there, and I'm quoting, "I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat." In 1952, the first ever session of the Rajya Sabha, Upper House of Parliament, it was held in Delhi. In 1952 again, Pandit Jawaharlal Nehru was again sworn in as the Prime Minister of India and formed a new union ministry following the first general elections. In 1962, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was sworn in as the second President of India, while Dr. Rajendra Prasad retired from the post. In 1967, Dr. Zakir Hussain was sworn in as the third President of India, becoming the first Muslim to hold the office. In 1971, the Government of India announced the nationalization of LIC General Insurance.
और वर्ष 1999 में जापानी छात्र के नागुई विश्व की सात सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र यानी कि 25 वर्ष में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, पर्वतारोही बने थे। इसके बाद 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब भी अपने नाम किया। इसके 10 बरस बाद यानी कि साल 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
In 1998, India successfully conducted two more nuclear tests at Pokhran, Rajasthan, completing the Pokhran 2 series, Operation Shakti.
बिल्कुल। और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। इस कड़ी में सबसे पहले बात बादल सरकार की। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे एक अभिनेता, नाटककार और निर्देशक थे। उन्होंने तीसरा रंगमंच का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया और उसे मंच पर भी उतारा। कम से कम खर्च में नाटक का मंचन करना और आम जन तक उसकी पहुंच को सुलभ बनाना ही उनका मकसद था। सन 1956 में बादल सरकार ने अपना पहला नाटक सॉल्यूशन एक्स लिखा। उनकी मुख्य रचनाएं हैं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, राम श्याम जोदू, कवि कहानी, बाकी इतिहास, तीसरी शताब्दी और कई।
Well, today we are also remembering Joseph Henry, the founding father of electrical industry and electrical technology as well, along with Michael Faraday revolutionized the electrical industry and electrical technology. Electric motors, generators, transformers, radio and the telegraph all function on electromagnetic principles discovered by these men who worked on opposite sides. Well, Henry not only pioneered electrical technology almost 50 years before Thomas Edison, but led the Smithsonian, well, the National Academy of Science, and occupied important positions such as President Lincoln's science advisor. The world of physics and electronics now uses the scientific unit Henry H to measure the inductance. Henry is the founding father of the National Weather Service and led study of the atmosphere as well. I was telling you about Joseph Henry.
Ta na na ta na ta na na. Ta na na ta na 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 na. Ta na na.
मैं अपने श्रोताओं से अपील करूंगा कि वे इस बैकग्राउंड में बज रही धुन को पहचानें।
Well, yes, I can.
और मुझे लगता है कि अब तक सभी श्रोता इसको पहचान ही गए होंगे।
Exactly.
ये धुन है प्रसिद्ध धारावाहिक मालगुड़ी डेज की, और आज इसको बनाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन स्वामी की पुण्यतिथि है। उन्हें आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। वे अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में तीन सबसे महान उपन्यासकारों में से एक गिने जाते हैं। मुलक राज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। उपन्यास तथा कहानी की विधा को अपनाते हुए आर के नारायण ने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में नाटक का मंचन किया।
Well, yes, we are remembering the literary genius, the master of simplicity and storytelling, R.K. Narayan. Well, through his stories, he brought Malgudi to life and gave Indian literature a classic voice. So the soul of Malgudi, Mukesh, still whispers through the pages of his books, reminding us that storytelling is not just a craft, but it is a way of life. He taught us to find beauty in the ordinary. So R.K. Narayan's Malgudi Adventures, it is more than just a collection of stories. It is a timeless portrayal of human nature, of small joys, and the rhythm of everyday life.
धारावाहिक के जो मतलब एक तरीके से हम बात करें तो एक किरदारों में जो जीवंतता दिखाई देती है इन्हीं के धारावाहिक मालगुड़ी डेज में जो मिठाई वाला करके एक पूरी सीरीज है उसमें क्या माली और उसके पिता के बीच में जो संवाद हुआ और एक तरीके से अगर हम बात करें तो
वेरी सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरीटेलिंग
बिल्कुल जीवंत बिल्कुल बुनियादी चीजें उसमें दिखाई गई हैं एक मिठाई की दुकान है मिठाई की दुकान पर उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत होगी उस समय के मिठाइयों के रेट लिखे हैं 25 रुपए और
They were prevalent at that time.
मतलब कितना वो सस्ता समय होगा और उसमें
yeah, it makes us wonder.
बिल्कुल so, आज भी अगर उसे हम देखें तो ऐसा लगता है कि पुराने समय में हम चले गए हैं.
Well, right, and we can actually say that he shaped Indian literature as we know it today. So we were telling you about R.K. Narayan. Narayan.
आर.के. नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ था उनकी प्रमुख कृतियां हैं द इंग्लिश टीचर वेटिंग फॉर द महात्मा द गाइड द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी द वेंडर ऑफ स्वीट्स अ टाइगर फॉर मालगुड़ी इसके अलावा भी ना जाने कितना ही कुछ उन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा कई सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था
Today, listeners, we're also remembering Ritchie Valens. Well, a pioneer, a trailblazer, a voice that changed music forever. Well, Ritchie Valens, though his life was cut tragically short, well, his impact was anything but small with songs like La Bamba. Ritchie brought Mexican-American culture to the mainstream, proving that rock and roll could be bilingual and deeply rooted in heritage as well. We were listening to Donna by Ritchie Valens.
और श्रोताओं आज असित सेन हिंदी के सिनेमा किंग कहे जाने वाले कॉमेडी किंग कहे जाने वाले असित सेन की आज जयंती है उन्होंने 4 दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाई उन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का यादगार किरदार प्ले किया असित सेन ने अभिनय की शुरुआत दुर्गाबाड़ी में चलने वाले कई बांग्ला नाटकों से की असित ने बांग्ला फिल्म अमानुष और आनंद आश्रम सहित अनुसंधान में भी काम किया उनकी प्रमुख फिल्में हैं 20 साल बाद चांद और सूरज भूत बंगला नौनिहाल ब्रह्मचारी यकीन और आराधना प्यार का मौसम पूरब और पश्चिम और भी बहुत कुछ आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म 2-4 से उनका ये डायलॉग
हेलो पुलिस स्टेशन
रामू गोपाल गिरधारी
चिल्लाओ नहीं पुलिस आ रही है
अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा सब मर जाएंगे चलो भागते रहे
So listeners, today we are also remembering T. Balasaraswati, the celebrated dancer of the 20th century, synonymous with Bharatnatyam, well known for highly technical and specialized technique of storytelling through mime. She was well known as the most successful dancer to tour the West, holding residencies at prestigious venues, particularly the universities where she used to perform as well. Well, today we curate, we have so much to say about her, and T. Bala Saraswati in her prime performing her signature piece Krishnani Begani. She is accompanied here by N. Narasimhulu on the vocal as well. Well, we were telling you about the highly celebrated dancer T. Bala Saraswati.
इनके बारे में अगर बात करें तो 1934 में इन्होंने कलकत्ता में पहली बार दक्षिण भारत में अपनी परंपरागत शैली का प्रदर्शन किया. ऐसा करने वाली तंजोर बाला सरस्वती भारत की पहली महिला थी. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. और आज सच्चिदानंद राउत राय जो कि उड़ीसा के साहित्यकार माने जाते हैं उनकी भी आज जयंती है. उन्हें वर्ष 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया. उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह कविता 1962 के लिए उन्हें सन 1963 में उड़िया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. इन्हें 1986 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पाथेय रक्त शिखा हांसत मसानीर फूला चित्रग्रीवा माटीर ताज और बाजी राउत उनकी प्रमुख रचनाओं में शुमार है. स्वाधीनता संग्राम सहित अनेक आंदोलन में भाग लेने के कारण सच्चिदानंद राउत राय कई बार जेल भी गए.
Well, today we are also remembering Major Ronald Ross, the epitome of Victorian bug hunters. Well, he returned to his roots as a physician and he pursued Manson. And the hypothesis is that the mosquito acted as a pseudo malaria parasite. He paid patients to allow mosquitoes to bite and then dissected mosquitoes after their blood meal. So, well, I was telling you about Major Ronald Ross.
और श्रोताओं, आज रविशंकर का जन्मदिन है. वे एक प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक कहे जाते हैं. उन्होंने तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक अभूतपूर्व विश्वव्यापी आंदोलन चलाया है. विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों आर्ट ऑफ लिविंग तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज सहित कई संगठनों की एक श्रृंखला और 156 देशों से भी अधिक देशों में तेजी से बढ़ रही अपनी उपस्थिति से गुरुदेव रविशंकर अब तक लगभग 45 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं. उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें कई ख्याति प्राप्त मंचों से सम्मान प्राप्त हुए हैं.
Well, today, let's also tell you about another musician, Stevie Wonder. The singer-songwriter, musician and record producer, well, he is credited as a pioneer and influencer of musicians across a range of genres that include R&B, it includes pop, soul, gospel, funk and jazz. Let's listen to one of his most loved hits.
No New Year's Day to say.
Listeners, today we are also remembering an instrumentalist, well, a jazz trumpeter and vocalist. Well, today it's his death anniversary today. His name is Chet Baker. Let's listen to one of his instrumental pieces, very, very famous. This is I Waited For You.
श्रोताओं, पार्श्व में बज रही इस धुन के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
वेल बी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।